तो सूरत सबा के बाद अब सूरत फातिर शुरू होगी। दोनों का रब जरा ढूंढिए। सूरत सबा में हमने भी क्या पढ़ा, जिन्नों की इबादत से रोका, 2-3 दफा जिन्नों का तस्करा आया। सूरत फातिर में फरिश्तों की इबादत से रोका जाएगा। दोनों सूरतों में एक कॉमन थिंग है, कुरैश मक्का का तकबर और उनके मनफी रवैये। बिल्कुल सेम सूरतों का आपको कंटिन्यूशन लगेगा। फिर एक और इनमें सिमुलेशन देखिए कि सूरत सबा पूरी हुई है शक पे, या तरद्दुदून, हाँ शक करते हैं। सूरत फातिर शुरू हो रही है शुक्र पर, क्योंकि शुक्र शक दोनों एक साथ नहीं रहते। सूरत फातिर तरतीब में देख रहे हैं तो 35 नंबर की सूरह है, 45 आते हैं, जो भी हम इंशाल्लाह इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। खूबियां इसकी नोट करेंगे, आपने पहले की कि नहीं? कुछ अल्लाह के नामों में से एक नाम, 3 सूरतें पूरे कुरान में अल्लाह के नामों में से, उसमें से एक सूरत फातिर, अर रहमान और सूरत अल आला 30वें पारे में। इतना सब्र हम औरतों से हो कहां सकता है। तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं ताकि अगली मेरी बात तो सुनने लगे हमारी प्यारी सी बहनें। सुभान अल्लाह। चलिए थोड़ी सी चंद बातें, 6 से 10 नबी के बीच के दौर में नाजिल हुई। जजा और सजा की धमकियां हैं इसमें, और इसलाह की धमकी है, तौहीद के दलाइल हैं, और बड़ी प्यारी सूरत। इसमें भी आप तकाबुल देखेंगे, अंधेरे और रोशनी का, धूप और छांव का, और इसमें एक बड़ी प्यारी आयत आ रही है उम्मते मुस्लिमा के नाम। अल्लाह करे कि हम वहां तक पहुँच कर बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 7 पहली आयतें, पहला रुकू है। अल्लाह ताला की नेमतों की याद दहानी, नोट करें ये भी अलहम से शुरू हो रही है सूरत। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुला। इस अल्लाह तआला के लायक हैं सारी तारीफें, जो इब्तदान आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को अपना पैगंबर यानी कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे ज्यादती करता है। अल्लाह तआला यकीनन हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तआला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे, इसको तो दिल के दरवाजे खोल कर सुनिए। मखलूक की न्याजमंदियों से और उनकी बातों से बेन्याज करने वाली आयत है। अल्लाह जो रहमत अपने बंदों के लिए खोल दे तो इसको कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे तो इसके बाद कोई इसको जारी करने वाला नहीं, वही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह मला मानी अली माते वला मोती अली मा मनात वला यन फाउजल जद्दी मिन कल जद। लोगो तुम पर जो इनाम अल्लाह ने किए हैं इन्हें याद करो। अच्छा यहाँ हम नोट करेंगे या यून नास बहुत आएगा मक्की सूरतों में, ऐसे ही है कि अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ उल्टे जाते हो। और अगर ये आपको झुटलाएं तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी झुटलाए जा चुके हैं, तमाम काम अल्लाह ही की तरफ पलटाए जाते हैं। लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले और न धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसीलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में दाखिल हो जाएं। ये है अटमोस्ट गोल शैतान का, लॉन्ग टर्म प्लान करके बैठा है कि सबको अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। मिस करेगा लोगों को, क्या है सारी जिंदगी मेरी बात मानते रहे तो यहाँ क्यों नहीं मेरे साथ आए। जो लोग काफिर हुए इनके लिए सख्त सजा है, और जो लोग ईमान लाए और अमाल नेक किए इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह हमें अता कर दे। ईमान से मतलब आयत फातिर 7, मोमिन गुनाहों से बचने और नेकियों के मवाके थामने वाला होता है। देखिए तकवा की 2 आंखें हैं, एक आंख से गुनाह दिखता है और बंदा उसको छोड़ देता है, और दूसरी आंख से नेकी का मौका दिखता है और उसको पकड़ता है। हमारी एक आंख बड़ी तेज होती है अपने नहीं दूसरों के मामले में, और उनके गुनाह दिखते हैं। चले थोड़ा तकवा आता है तो अपने भी गुनाह दिखते हैं, लेकिन नेक नजर कमजोर है। आई साइट इज वीक फ्रॉम वन साइड, राइट साइड की आई साइट वीक है, और वो क्या है, बड़ी बड़ी नेकियों के मौके सामने आते हैं, दिल नहीं खुलते। सोची प्या तो बंदा गया, सोचों में पड़ते हैं। नियत करें, दुआ करें कि अल्लाह का नेता बना दे, जो मेरी नेकी है वो कोई ना ले, मैं तो अपनी नेकी नहीं छोड़ूंगी। करीब की नेकी छोड़कर दूर की नेकी पे मत जाइए, हाथ है नेकी के मौके को छोड़ के अगले साल की नेकी पे मत जाए। कुछ लोग हैं उनका एक पारा मिस हो जाए ना, कहते नहीं, अब मैं अगले साल का दौरे कुरान सुनू क्योंकि एक पारा मिस हो गया। तो आप उन्हें कहते हो 29 पारे तो है ना, अच्छा सफीलुल जन्ना कर ले, नहीं वो इस साल मैंने पाकिस्तान जाना है। तो क्या हुआ, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान में कोई बैन है कुरान पे? नेट से सुन रही हैं आप? फिर नहीं ना, फिर वहां से मसला होगा। अगले साल सफीलुल जन्ना मुझे बताइएगा। आप में से भी कईयों का होगा इशू, हमने पाकिस्तान जाना है, इंटरनेट पाकिस्तान में यहाँ से भी अच्छा है माशाल्लाह, और सस्ता बहुत है, जितना मर्जी ले लें। जो हो सके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, लाइट भी साथ ले जाए, ईमान का मसला है। वहां बाजार खुले हुए हैं, वहां पार्लर खुले हैं, वहां चीजें हमें सस्ती लगती हैं, हालांकि इसमें सब बातें झूठ है, कोई चीज सस्ती नहीं। चलिए अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसानियों के मामले करे, फेथ इन एक्शन, हर उस काम से बचना जो अल्लाह की रहमतों से दूर कर दे, दौरे हाजिर के पुरफरेब शैतानी हरबों से बचना है। बचना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर कुरान थामना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था फितनों के दौर में इस कुरान को जो थाम लेगा वो बचेगा, और ये बात सच है। आयत 8 से 14, रुकू नंबर 2, बुराई पे फख्र करना, ये दुआ करिए। अल्लाह हमें कहीं हमारी हमाकतों पे फख्र करने वालों में ना शामिल कर दे। क्या बस वो शख्स जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुजयन कर दिए गए हैं बस वो इन्हें अच्छा समझता है, क्या वो हिदायत याफ्ता शख्स जैसा है? यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है, जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है, बस आप इन पर गम खाकर अपनी जान हलाकत में ना डालें। तीसरा मुकाम है नबी के बखा का, और दिल में गम था कि लोग दीन पे आ जाएं। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीनन अल्लाह तआला बखूबी वाकिफ है, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं, और इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं, इसी तरह दोबारा जी उठना भी है। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो, आप में से कौन बहन है जो इज्जत चाहती है? आप नहीं, आपके बच्चे भी इज्जत चाहते हैं, तो अब जरा इस आयत को सुनिए। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ताला ही की सारी इज्जत है, यानी जो अल्लाह के साथ जुड़ेगा ना उसको इज्जत मिलेगी। ये अल्लाह की किताब इतनी प्यारी है, यकीन करें जो इस किताब से जुड़ता है ना वो भी इज्जत वाला हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर फारूक बन गए, अली हैदर बन गए, उस्मान जुन्नौरैन कहलाने लगे। आज भी जो इस किताब को पकड़ता है वो लोगों को प्यारा भी लगता है, वो अच्छा भी लगता है, वो उसके साथ दिल के साथ ताल्लुक भी जुड़ते हैं। एक वक्त आता है कि लोग उसकी इज्जत भी करने लगते हैं, चाहे शुरू में उसके उस काम पे परेशान हो, तरफ चढ़ते हैं, और नेक अमल इनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दाउखात में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तरसाप है, और इनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। लोगो अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े यानी मर्द और औरत बना दिया, औरतों का हामिला होना और बच्चों का पैदा होना सब इसके इल्म से ही है, और जो भी बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिसकी उम्र घटे वो सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला पर ये बात बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देखिए तकाबुल, बड़ा मजे का ये रुकू है। पर बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा है प्यास बुझाता और पीने में खुशगवार, ये दूसरा खारी है कड़वा, तुम इन दोनों में से ताजा गोश्त खाते हो सी फूड, और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, ज्यूल्स एंड जेम्स, लूलू वल मरजान, और आप देखते हैं कि बड़ी कश्तियां पानी को चीरने फाड़ने वाली दरियाओं में हैं, ताकि तुम इसका फजल तलाश करो और ताकि इसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा कि इन चीजों से फायदा ना उठाओ, शुक्र के इनको इस्तेमाल भी करो और अल्लाह की रजा वाले काम भी करो। वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और आफ्ताबो महताब को इसी ने काम में लगा दिया है, हर एक म्यादे मुइन पर चल रहा है, यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला, इसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। क्यों डरते हो लोगों से? अगर तुम इन्हें पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, तो बंद दरवाजों को क्यों खटकाते हो? शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है इसके बाद, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबरें ना देगा। क्या खूबसूरत लफाजी है इसमें, अल्लाह करे कि शिर्क की जड़ कट जाए और हमारे अंदर बाहर के सारे शिर्क खत्म हो जाए। फेथ इन एक्शन क्या है कि अल्लाह नेकी की तलब रखने वाले को नेकी की हिदायत देता है। आपको तलब है, इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी। अल्लाह की पैदा करदा चीजों से रोजी तलाश करनी है और फिर उसका शुक्र अदा करना है। रुकू नंबर 3, इसको सुनते वक्त आपने क्या करना है? एक फकीर किसी के दर पे खड़ा है और भीख मांग रहा है। 15 से 26, 15 to 26 आयात, रुकू 3, अल्लाह गनी और हम फकीर हैं। या अय्युहन्ना सुन तुम अल्फुकरा इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह भी नियाज और खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ से लदा हुआ दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो इसमें से कुछ भी ना उठाएगा, चाहे कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हुआ कुल्ली जेन में ले आइए, कोई आपके मेरे गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। आज आप जिसकी मर्जी खुशी के लिए अपनी नेकियों के मौके जाया कर दें, वो लोग तो नहीं आपका कल बोझ उठाएंगे। आप तो सिर्फ इन्हीं को आगाह कर सकते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए वो अपने ही नफे के लिए पाक होगा। लौटना सबका अल्लाह ही की तरफ है, परंदा और आंखों वाला बराबर नहीं, और ना तारीकी ना रोशनी, और ना छाँव ना धूप, और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है। दुआ कर अल्लाह मुझे सुनवाते ही रखना। और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने ही आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई कि जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुठला दें तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे उन्होंने भी झुठलाया था। इनके पास भी इनके पैगंबर मोजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे, फिर मैंने इन कुफार को पकड़ लिया, बस मेरा अजाब कैसा हुआ, कैसा जलाल है इसमें। अमल की बातें सिर्फ अल्लाह इंसान की मुख्ताजी दूर कर सकता है। इसी से मांगना है, इसी की इताअत करनी है, और इसी का बंदा बन के जीना है। क़यामत में कोई किसी के आमाल का जिम्मेदार नहीं होगा, बस अपने आमाल दुरुस्त करने हैं। अल्लाह के सामने जवाबदेही को सामने रख कर ही दुनियावी मामलात करने हैं। इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं इस आयत को कोट करूंगी और आपको इस पे एक एनालॉजी दूंगी जो अल्लाह ने आपके नसीब में रखी। आगे है रुकू नंबर 4, 27 से 37। कायनात की रंगा रंगी, अलम तरअन्नल्लाहा अनज़ला मिनस्समाई माअन, क्या आपने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफेद और सुरख, कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और कई बहुत गहरे स्याह। और इसी तरह आदमी और जानवर और चौपायों में भी बात ऐसे हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह जबरदस्त बड़ा बख्शने वाला। ये आयत का नंबर नोट कीजिए, अगर आपको आलिमा बनने का शौक है तो ये आयत आपके लिए। कई लोग इल्म इसलिए हासिल करते हैं कि आलिम कहलाएं, आलिमात कहलाएं। अल्लाह ने यह आलिम की पहचान दी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल्उलमा, जितनी खशियत उतना ही। अल्लाह का डर नहीं है तो किताबें पढ़ पढ़ के आप चाहे बूढ़े हो जाएं आप आलिम नहीं कहला सकते। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है इसमें से छुपा कर और ऐलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी, ताकि इनको इनकी उजरतें पूरी दे और इनको अपने फजल से और ज्यादा दे। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। कौन बिजनेस माइंडेड है? किनके घर में हर वक्त कारोबार, बिजनेस, मनी की बातें होती हैं, उनको जाकर ये बिजनेस डील सुनाइएगा। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी पूरी खबर रखने वाला, देखने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया। यहाँ रुकिएगा, जरा सा कॉन्शियस हो। ये है उम्मत मुस्लिमा के नाम, आज के पारे का पैगाम। पारे के टॉपिक को सोचिए और जरा इसके तर्जमे को सोचिए। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया, जिनको हमने अपने बंदों में पसंद फरमाया। उम्मत मुस्लिमा और आप जैसे लोग जिनको अल्लाह किताब सुनवाने के लिए बिठाता, लेकिन बाद में क्या होगा इस दौरे कुरान के बाद, या इबन सबीलुल जन्ना करने वालों के बाद, नूरुल नूर के बाद, और इसी के बाद हर नेकी के मौके के खत्म होने के बाद लोग तीन गिरोहों में बंटते हैं। आज आपने खुद से इस आयत के बारे में सवाल करना है। फिर बाज तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, वो वहीं पलट जाते हैं जहां से आए। सारी हिजरतें जो दौरे कुरान के दौरान की थी गुनाहों से, वो सब वापस आ जाते हैं। सारी तौबा तिल्ला माफियां खत्म, वही रूटीन, वही सब कुछ। और बस इनमें से मुतवस्सत दर्जे के हैं, ये वो हैं कि जो गुनाह तो हो सकता है ना दोबारा करें वो, लेकिन जो नेकियां कर रहे थे रमजान में और दौरे कुरान के दौरान, वो छोड़ देंगे। लेकिन आप सब क्या करेंगे? और बाज इनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं, यही बड़ा फजल है। मैं आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह पे ये फजल कर दें, ये तीसरे ही बचेंगे। कुरान पढ़ना पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स नॉट फॉर रमदान, वी आर नॉट रमदानी मुस्लिम, हम 24 घंटे के मुस्लिम हैं। इस किताब को ऑक्सीजन मास्क की तरह अपने साथ चिपकाए रखिए, कब्र में भी ये किताब इंशाल्लाह साथ जाएगी। अब आपको मिलेगा क्या, सुन लीजिए, वो बागात हैं हमेशा रहने के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक उनकी वहां रेशम की होगी। अच्छा लगा अपना ड्रेस कोड जन्नत का? और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा, जहाँ ना तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना हमको कोई खस्तगी पहुंचेगी, यानी बुरे हाल नहीं होंगे। अल्लाह आप सबको उसमें डाल दे और मुझे भी, हम एक दूसरे को दुआएं दिया करें। और जो लोग काफिर हैं इनके लिए दोजख की आग है, ना तो इनकी कजा ही आएगी कि मर ही जाएं, और ना दोजख का अजाब ही इनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सजा देते हैं और वो लोग इसमें चिल्लाएंगे कि हमारे रब हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे, बरखिलाफ उन कामों के जो किया करते थे, यानी आप दोबारा बेत, हम बहुत अच्छे काम करेंगे, हम कुरान पढ़ के आएंगे। अल्लाह कहेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी कि जिसको समझ ना होता वो समझ सकता, और तुम्हारे पास तो डराने वाला भी पहुंचा था। 3 सेकंड गौर कीजिए, ये जुमले क्या सिखा रहे हैं। उम्र मिली 60 साल से उम्र वालों का हुज्जत तमाम हो गई, हिसाब सख्त होता जाता है उम्र के साथ। कितनी जिंदगी गुजार दी, तुम्हें एक किताब पढ़ने की मोहलत ना मिली। सो मजा चखो, कैसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। क्या जुल्म था इस पे, अपनी जान पे जुल्म था। दुनिया के पीछे लगे रहे, इसी के काम ना खत्म हुए, इसी के जौक और शौक कम ना हुए, और वो किताब छोड़ दी जिसने जन्नत में पहुंचाना था। अमल की बात, अल्लाह की कायनात के हर पहलू पे गौर करके अल्लाह ताला की हिकमतों को पाना है, नेकी का हर अमल करके अल्लाह ताला से अच्छे बदले की उम्मीद रखनी है। और अब आगे सुनिए एक घाटे का सौदा। अल्लाह ना करे आप में से मेरे में से कोई बैंक करप्सी का सौदा करे। 38 से 45, इन अल्लाह आलिम अलगैब समावाती वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमान और जमीन की पोशीदा चीजों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का, वही ऐसा है जिसने तुमको जमीन में आबाद किया। बस जो शख्स कुफर करेगा, इसके कुफर का वबाल इसी पर पड़ेगा, और कुफार के लिए इनका कुफर इनके परवरदिगार के नजदीक नाराजगी ही बढ़ने का सबब होगा, और कुफार के लिए इनका कुफर खसारा ही बढ़ने का बायस होता है। आप कहिए कि तुम अपने करार करदा, यानी खुद ही मुकर्रर किए हुए शरीकों का हाल तो बताओ, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, यानी मुझे ये बतलाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सा जुस बनाया है, या इनका आसमानों में कुछ साझा है, या हमने इनको कोई किताब दी है कि ये इसकी दलील पर कायम हो। कोई रीजन नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। बल्कि ये जालिम एक दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा करते आते हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इनको थाम भी नहीं सकता। तो फिर क्यों नहीं गुनाहों पे आसमान गिरते? इसलिए कि वो हलीम और गफूर है। बंदों के हाल देख कर अल्लाह अगर गुस्से में आ जाए तो ये आसमान कब का गिर चुका होता। और इन कुफार ने बड़ी जोरदार कस्में खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज्यादा कद हिदायत कबूल करने वाले हों। फिर जब इनके पास पैगंबर आ पहुंचे तो बस इनकी नफरत ही में इजाफा हुआ, दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और इनकी बुरी तदबीरों की वजह से। और बुरी तदबीरों का वबाल इन तदबीर वालों पर ही पड़ता है। सो क्या ये इसी दस्तूर के मंतजर हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है? बस आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएंगे और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता न पाएंगे। आज अल्लाह की शरीयत को अपने जिस्म से लेके अपने मुल्कों पे और इस दुनिया पे नाफिज करें, फिर आप अल्लाह की सुन्नत देखेंगे कि कितनी बरकत और कितनी बहार है आपकी जिंदगी में। और क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं जिसमें देखते भालते कि जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं, इनका इंजाम क्या हुआ? हालांकि वो कुव्वत में इनसे बड़े हुए थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोई चीज इसको हरा दे, ना आसमानों में और ना जमीन में, और वो बड़े इल्म वाला बड़ी कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों पर इनके अमाल के सबब इनकी पकड़ करने पर लगे तो रुए जमीन पर एक जानदार को ना छोड़ता। नहीं, अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे उनको पकड़ ले तो एक जिंदा हस्ती दुनिया में ना रहे। लेकिन अल्लाह इनको एक मियाद मुअय्यन तक मोहलत दे रहा है। बस जब इनकी ये मियाद आ जाएगी तो अल्लाह ताला अपने बंदों को देख लेगा। क्या धमकी पे सूरत पूरी हुई है? हम सब अपनी उस मोहलत को पूरा करके हुद्दत के तमाम होने के इंतजार पे हैं। तो क्या पता चला कि जिंदगी को अल्लाह की तरफ से दी हुई मोहलत समझना है, और जो मौका नेकी का आए उस पे लब्बैक कहना है, अल्लाह की इताअत करनी है। सूरत फातिर पूरी हुई, आगे सूरत यासीन है। सूरत यासीन 36 नंबर की सूरा है, ओनली 21 आयात हैं इसमें। थोड़ा सा इसको भी देखिए, हरूफ मुकत्तात पे सूरतों में से ये पहली सूरत है। और भी दो सूरतें आप कुरान में आगे पढ़ने वाले हैं, कौफ और नून। अल्लाह का जलाल है इस सूरत में। अल्लाह तला के इख्तियार को वाजे कर कर खोल दिया गया है। शिर्क की तरदीद है और आखरत की दलील है। इस सूरत में काफिर और मोमिन का फर्क बताया जाता है, खिलाफत और विरासत की बात है। इबलीस को दुश्मन समझो, हमें ये नसीहत है, और गैर अल्लाह की बेइख्तियारी और अल्लाह के इख्तियार की बात है। पैगाम क्या है कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह मान लो और कुरान पर ही मान लाओ। जलाली सूरत है, 45 दफा इसमें अल्लाह ने अपने बारे में हम का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं ना, कहीं अना, कहीं नाहनु वगैरह। आइए देखते हैं कि आज इसमें हमारे नसीब में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 12। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाह है। यासीन बल कुरानिल हकीम, कसम है कुराने बा हिकमत की कि बेशक आप पैगम्बरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा डराए नहीं गए, बस इसी वजह से वो गाफिल है। यह है आज की नस्ल का इशू। पिछली दो नस्लों को नहीं डराया गया, सिर्फ कुरान पढ़ाया गया। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, बस ये लोग ईमान न लाएंगे, हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं। ये दूसरी वजह, तासुबात के तौक, फिरका परस्ती के तौक, फिर वो थोड़ियों तक हैं जिससे इनके सर ऊपर को उलट रहे हैं। ऐसे तनी भी गर्दने अकड़ और तकबर की तरफ इशारा है। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी जिससे हमने इनको ढांक दिया, बस वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ईमान नहीं लाएंगे। जबन हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। बस आप इसको मगफरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दें। आप जैसे लोगों की तारीफ है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस्तकामत दे। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, बेहतरीन आयत। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। इस पे एक लेक्चर है, व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, इसको सुन लें। आपकी औलाद आपके पीछे आपका सदका जा रही है या कुछ और है? दो आयतें ईमान से मुतल्लिक। 7 नंबर, ईमान की दावत उन्हें फायदा देती है जिनके दिल तासुब से पाक हो। और 10, सरकश और जिद्दी दिल हिदायत नहीं पाते। फेथ इन एक्शन, कुरान से हिदायत और हिकमत हासिल करनी है। दावते हक देते हुए हक कबूल करने वालों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। कोशिश करनी है कि लोहे महफूज कल हमारी शर्मिंदगी का बायस ना बने। कोशिश ये करनी है कि हमारे आमालनामे कल हमें शर्मिंदा ना करें। और आखिरी आयतें जिसका सिलसिला अगले पारे से शुरू होता है, रुकू नंबर 2 में 13 से 21, सबक आमोस दास्तान। वतरिबलहुम मसलन नस्खा बल करियति जाहल मुरसलून। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास 2 को भेजा, पस इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से उनकी ताईद की, पस इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास भेजे हुए हैं। इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नासिल नहीं की। तकबर की वजह से बोले तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ हक को वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बस ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से ही निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा मेरी कौम इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राहे रास पर हैं। खैर ख्वाही अल्लाह मुझे आपको दे, अपने खैर ख्वाहों की कदर करनी है, पैगाम देने वाले की हैसियत नहीं पैगाम पर गौर करना है। और आज ईमान की शाखों में से 43 नंबर, बुग़्ज़, कीना और हसद, इनको दिल से खुरच कर निकाल दें। एनिमिटी, एनवीनेस और जेलसी। अल्लाह के नबी की तालीम और तरबियत क्या थी जिसने इंसानों को गुमराही और जहालत से निकाला, आला तरीन अखलाक की तरबियत की, तज़किया नफ्स किया और दिल को साफ रखना सिखाया। कीना किसी के गम पर खुश होना और खुशी पर गमगीन होना, इससे रोका। बुग़्ज़ कहते हैं दिली दुश्मनी और अदावत को, और किसी की नेमत का जवाल चाहना हसद है। अल्लाह हमें इन सारी गंदी चीज़ों से पाक कर दे। सूरत मायदा आयत 91 में अल्लाह ताला ने अदावत और बुग़्ज़ से रोका कि ये शैतान का फेल है। हदीस है बुखारी की 6064, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठी होती हैं, और लोगों के ऐप तलाश करने के पीछे न पड़ो। आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुगज ना रखो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी अगर हमारे दिल दूसरों के साथ साफ हो गए। और 44 आज का आखिरी स्लॉट, हराम से बचो। देख रहे हैं आप कहाँ से हम चले थे, अल्लाह से चलते हुए अब मामलात और रिस्क के हलाल के अंदर आगे। हलाल की क्या अहमियत है, पाकबाजी और पाक दामनी की दलील है हलाल खाना। अल्लाह ने अम्बिया कराम की इस्मत को महफूज रखा, वो हलाल खाते थे। हजरत आयशा की बरात में सूरत नाजिल फरमाई, पाक दामन पर तोहमत लगाना एक कबीरा गुनाह है। इसी तरह हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत, खून और माल हराम है। और अहज़ाब 58 में हम पढ़ कर आए हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो बहुत बड़ा बुख्तान और बड़े गुनाह का बोझ अपने सर पे लेते हैं। हदीस से पता चलता है कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से एक है नाहक खाना यानी हराम खाना। बुखारी और मुस्लिम में भी ये रिवायत है। अल्लाह आपको मुझे हर तरह के हराम से बचाए। आइए जरा आज की दुआ मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा अन्फानी बिमा अल्लमतनी वालिमनी मा यन्फाउनी वजिदनी इल्मा। ए अल्लाह मुझे फायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया, और जो मुझे सिखा वो जिसमें मेरे लिए फायदा हो और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आपको तो इल्म की दुआएं तस्बीह के तौर पे मांगनी चाहिए क्योंकि आपके लिए इल्म के बाब खुलते भी जा रहे हैं। आज के वो अशआर, तू राज कुन फुका है अपनी आंखों पर इया हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। ये है शरीयत का निफास। इन्नी जाइलुकल लिन्नासी इमामा, और वह इस काल रब्बुकल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुकल अर्दी खलीफा। इंसानियत की मेराज ये है कि दुनिया में अल्लाह का एम्बेसडर बन के फिरे। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अखुव्वत का बियां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। ये दीनदार तबके के नाम पैगाम है। मोहब्बतों के साथ इस कुरान को, इस दीन को, इस्लाम को दीजिए, और हवस वाली आयत दुनियादारों के लिए कि दुनिया जितनी भी मिली छोड़ी जानी है, अल्लाह आपसे मुझसे राजी हो जाए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तवाब रहीम सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्की ही वस्हाबी अजमाइन।